एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो शायद थोड़ी बेचैन करने वाली हो।
हाँ, थोड़ी नहीं, शायद काफी।
हाँ, लेकिन यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। ये किताब जिंदगी की मतलब उस बुनियाद पर ही सवाल उठाती है जिसे हम अक्सर बस मानकर चलते हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रोमानियाई फ्रांसीसी दार्शनिक E.M. सियोरान की किताब द ट्रबल विद बीइंग बॉर्न,
यानी जन्म का संकट।
सही। और देखिए, ये कोई वो हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प टाइप की किताब नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो हमारे होने मतलब अस्तित्व, हमारी चेतना और इस दुनिया में आने के बहुत ही बुनियादी विचार पर कुछ बहुत गहरे तीखे सवाल खड़े करती है।
हाँ, और कभी कभी परेशान कर देने वाले सवाल भी।
बिल्कुल। और आज के समय में जहाँ हर कोई किसी न किसी तरह से खुशी, मन की शांति या जिंदगी के मायने ढूंढ रहा है।
हाँ, सब लगे हुए हैं।
तो सियोरान का नजरिया एकदम अलग है, थोड़ा निराशावादी जरूर, पर शायद इसीलिए ज्यादा ईमानदार लगता है और शायद ज्यादा जरूरी भी।
सही कहा। हमारे पास इस किताब के दो काफी अच्छे सार मौजूद हैं जो इसके अंदरूनी विचारों को समझने में हमारी मदद करेंगे।
हाँ, उनसे काफी मदद मिलेगी।
आज हमारा मकसद है सियोरान के तर्कों को परत दर परत खोलना, उनकी मुश्किल लगने वाली बातों को थोड़ा आसान बनाना।
हाँ, और ये देखना कि क्या उनके इस कड़वे लगने वाले दर्शन में भी आज हमारे लिए कोई काम की बात छिपी हो सकती है, कोई नई सोच।
बिल्कुल। तो तैयार हैं इस बौद्धिक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले लेखक को ही जान लेना दिलचस्प है। इमिल सियोरान, 1911 से 1995। ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टाइप पारंपरिक दार्शनिक नहीं थे।
अच्छा।
रोमेनिया में पैदा हुए, लेकिन जिंदगी का बड़ा हिस्सा पेरिस में गुजारा और फ्रेंच में लिखना शुरू किया।
ओके।
और उनके विचार किताबी कम, उनके अपने अनुभवों की उपज ज्यादा लगते हैं, खासतौर पर उनकी पुरानी नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया जिसे कहते हैं।
ओह।
तो वो उसे सिर्फ एक दिक्कत नहीं मानते थे।
नहीं,
वो उसे चेतना और वक्त के एहसास को समझने का एक अजीब सा जरिया मानते थे।
क्या बात है।
और हाँ, उनका हमेशा एक बाहरी, एक निर्वासित यानी एक्साइल जैसा महसूस करना, वो भी उनके विचारों में साफ झलकता है।
हाँ, और उनका लिखने का तरीका भी तो एकदम अलग था। आपने बताया वो लंबे चौड़े ग्रंथ नहीं लिखते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बातें छोटे छोटे तीखे वाक्यों में, सूक्तियों में, एफरिज्म्स जिन्हें कहते हैं, उनमें सामने आते हैं,
जैसे कोई अचानक से कोंच दे।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही।
पर क्या आपको लगता है कि ये तरीका उनके गहरे निराशावाद को समझने में मुश्किल नहीं बना देता, जैसे कोई पूरी तर्क की कड़ी ही गायब हो?
अच्छा सवाल है, लेकिन शायद सियोरान का पॉइंट ही यही था।
क्या?
कि जिंदगी खुद ही एक टूटी फूटी बेतरतीब चीज है, उसे किसी एक सीधे साधे सिद्धांत में बांधना ही एक तरह से झूठ होगा।
समझा।
तो उनके ये छोटे नुकीले टुकड़े शायद जिंदगी की इसी बिखरी हुई सच्चाई को बेहतर पकड़ते हैं।
हाँ, ये हो सकता है।
उनका दर्शन बहुत निराशावादी है, ये तो है। आर्थर शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों का असर भी दिखता है, पर आवाज उनकी अपनी है।
कैसी है उनकी आवाज?
एकदम खरी, भावनाओं को बिना लाग लपेट के कहने वाली, और अक्सर एक अजीब से काले हास्य, डार्क ह्यूमर से भरी हुई।
दिलचस्प।
जन्म का संकट जैसी किताब लिखने के लिए शायद उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर इन्हीं मुश्किल सवालों से जूझते रहे।
तो आते हैं इस किताब पर, जन्म का संकट, जो 1973 में फ्रेंच में आई।
हाँ,
आपने कहा ये एक तरह से सियोरान के सारे विचारों का निचोड़ है। और इसका जो सबसे मुख्य, सबसे चौंकाने वाला विचार है वो ये है, इंसान की असली मुसीबत मौत या दुख नहीं,
बल्कि उसका पैदा होना ही है।
ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि जन्म लेना ही एक आपदा है, मुझे सच में झटका लगा था।
हाँ, लगता है ये हमारी पूरी सोच को पलट देता है ना?
बिल्कुल।
सियोरान का तर्क यही है कि जन्म कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक तरह की ब्रह्मांडीय दुर्घटना है, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, एक मुसीबत।
ये हमें न होने की यानी गैर अस्तित्व की जो सुकून भरी हालत है, उससे खींचकर चेतना, इच्छाओं, समय की दौड़ और आखिर में मौत की तकलीफ भरी दुनिया में फेंक देता है।
और वो कहते हैं कि जो चेतना हमें इंसान बनाती है,
वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी है।
क्यों?
क्योंकि इसी चेतना से हमें अपनी बेवक्तगी, अपनी सीमाओं का और इस असीम ब्रह्मांड की उदासीनता का एहसास होता है।
तो ये किताब कोई तसल्ली देने या जिंदगी की समस्याओं का हल बताने के लिए नहीं लिखी गई है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इरादा मरहम लगाना नहीं है, बल्कि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से बिना किसी लाग लपेट के हमारा सामना कराना है। तो ये किन लोगों को ज्यादा अपनी सी लगेगी?
शायद उन लोगों को जो जिंदगी की बेमतलबियत या तकलीफ के एहसास से गुजरे हैं
और जिन्हें आसान जवाबों से चिढ़ होती है।
हाँ बिल्कुल, इसमें कई गहरे मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे
चेतना आखिर है क्या, वरदान या श्राप,
दुख से क्या बचा जा सकता है या ये जिंदगी का हिस्सा ही है।
हाँ, और वो सारे भ्रम जैसे उम्मीद, तरक्की, कोई बड़ा मकसद जिनके सहारे हम जीते हैं, क्या वो सब झूठे हैं?
वक्त का एहसास हमें कैसे तकलीफ देता है?
और वो सबसे बड़ा, शायद सबसे असहज करने वाला सवाल, क्या कभी पैदा ही ना होना ज्यादा बेहतर होता?
बाप रे, काफी भारी सवाल है।
हैं तो
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। किताब में कोई पारंपरिक अध्याय तो है नहीं?
नहीं।
तो हम इसके मुख्य विचारों को थीम के हिसाब से देखते हैं। पहला और सबसे बुनियादी, जन्म की आपदा, द कलामिटी ऑफ नेटैलिटी।
हाँ, यहीं से वो बात शुरू करते हैं। उनका कहना है कि हमसे बिना पूछे हमें इस दुनिया में लाया गया है।
ये न होने की पूरी शांति से एक जबरदस्ती बाहर निकाले जाने जैसा है,
और इसी सोच के चलते वो बच्चे पैदा करने को भी
एक क्रूर और गैर जिम्मेदाराना काम मानते हैं।
गैर जिम्मेदाराना?
हाँ, क्योंकि हम किसी और पर इस मुश्किल अस्तित्व का बोझ डाल रहे हैं उनके हिसाब से।
ये सुनना ही कितना कठोर लगता है ना?
लगता तो है, लेकिन वो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं। जन्म के बाद हमें मिलती है चेतना का अभिशाप, द टॉर्मेंट ऑफ कॉन्शियसनेस,
यानी खुद के होने का, सोचने समझने का एहसास।
हाँ, ये हमें जानवरों से अलग करता है, पर सियोरान के लिए यही सबसे बड़ी तकलीफ की जड़ है।
कैसे?
हम अपने दुख के बारे में सोच सकते हैं, आने वाले कल की चिंता कर सकते हैं, अपनी मौत के बारे में पहले से जान सकते हैं। जानवर ये सब नहीं करते।
सही बात है।
सियोरान तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें पत्थर या फूल से जलन होती है।
क्यों भला?
क्योंकि वो बस है बिना ये जाने कि वो है। उनके लिए चेतना एक बीमारी है, प्रकृति की एक भूल।
और ये चेतना वाली बात तो आज के माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस के दौर में बिल्कुल उल्टी लगती है ना?
बिल्कुल बिल्कुल उल्टी।
खैर, अगला मुद्दा है भ्रमों की निरर्थकता, द फ्यूटिलिटी ऑफ इल्यूजन्स।
हाँ, मतलब हम सब उम्मीद, कोई मकसद, कोई अर्थ, तरक्की जैसी चीजों के सहारे जीते हैं।
जीते ही हैं।
सियोरान मानते हैं कि ये जीने के लिए जरूरी है, शायद इनके बिना हम जी ही ना पाए, लेकिन वो इन्हें बुनियादी तौर पर झूठा भी मानते हैं।
झूठा क्यों?
खासकर उम्मीद, होप। वो कहते हैं कि उम्मीद हमें सच्चाई का सामना करने से रोकती है और इस तरह दुख को और लंबा खींचती है।
और इतिहास के बारे में क्या?
इतिहास उनके लिए वो बेवकूफी और हिंसा का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, और प्रगति, प्रोग्रेस बस एक मन बहलाने वाला ख्याल।
पर क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की उम्मीद रखना बुरा है, या बस झूठी उम्मीदों से बचना चाहिए?
सियोरान शायद कहेंगे कि उम्मीद रखना ही असलियत से आंखें चुराना है।
अच्छा।
और इसी से जुड़ा है समय की कैद, टाइम एज प्रिजन का विचार।
ये क्या है?
हमारा वक्त का एहसास, गुजरे कल की यादें और पछतावे, आने वाले कल की चिंताएं हमें एक दिमागी जेल में बंद रखता है।
कैसे?
हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की उधेड़बुन में। वर्तमान पल, जो शायद सुकून का पल हो सकता है, वो पकड़ में ही नहीं आता।
ये कुछ ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपका ध्यान या तो पीछे के शीशे पर है, मतलब अतीत पर,
हाँ?
या आगे आने वाले मोड़ पर, भविष्य पर, और आप सामने की सड़क यानी वर्तमान को ठीक से देख ही नहीं पा रहे।
बिल्कुल सही उपमा है।
वर्तमान तो बस अतीत और भविष्य के बीच एक पतली सी लकीर बनकर रह जाता है।
बिल्कुल।
और फिर आता है एक बहुत ही अहम और अक्सर गलत समझा जाने वाला मुद्दा, आत्महत्या का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ सुइसाइड।
हाँ, ये मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
हाँ, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि सियोरान आत्महत्या करने की सलाह नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं।
तो फिर, बल्कि वो आत्महत्या के ख्याल को, इस विचार को कि हम चाहें तो जीवन खत्म कर सकते हैं, उसे एक तरह का जीवन रक्षक मानते हैं।
ये सुनने में कितना अजीब लगता है, आत्महत्या का ख्याल जीवन कैसे बचा सकता है?
उनका तर्क है कि ये जानना कि आपके पास एक एग्जिट का रास्ता है, ये विकल्प आपके हाथ में है, यही ख्याल जिंदगी के बोझ को सहने लायक बना देता है, ये गुलामी को एक मर्जी की कैद में बदल देता है।
अच्छा।
उनका वो मशहूर वाक्य है ना, मैं सिर्फ इसलिए जीता हूँ क्योंकि मेरे पास जब चाहूँ मरने की ताकत है।
हाँ, सुना है।
ये ताकत का एहसास ही जिंदगी को सहनीय बनाता है, उनके मुताबिक।
समझ गया, ये नियंत्रण का भाव है जो राहत देता है। ओके, और आखिर में वो भाषा की विफलता और मौन की खोज की बात करते हैं।
हाँ, फेलियर ऑफ लैंग्वेज सर्च फॉर साइलेंस।
इसका क्या मतलब है?
उनका मानना है कि हमारी भाषा, हमारे शब्द जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों, खासकर दुख, खालीपन और न होने के सुकून को बयान करने में नाकाम है।
शब्द छोटे पड़ जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो मानते हैं कि संगीत, खासकर बाख का संगीत, भाषा से बेहतर है।
अच्छा,
लेकिन सबसे ऊंचा आदर्श तो मौन यानी खामोशी है।
खामोशी।
हाँ, खामोशी जो न होने की भाषा है, जन्म से पहले की हालत की जबान।
आज के शोर शराबे और 2407 जानकारी के धमाकों के बीच ये मौन की बात कितनी जरूरी लगती है ने?
बहुत जरूरी, बिल्कुल।
तो अगर हम इन सब बिखरे हुए विचारों को समेटने की कोशिश करें तो कुछ मुख्य बातें संदेश उभर कर आते हैं।
हाँ, क्या होंगे वो?
पहला और सबसे बुनियादी, जन्म एक मौलिक समस्या है, कोई तोहफा नहीं।
ये हमारे समाज की उस सोच को सीधी चुनौती है जहां नए जीवन का हमेशा जश्न मनाया जाता है।
बिल्कुल।
दूसरा,
चेतना दुख का स्रोत है। हमारी सोचने समझने की काबिलियत ही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है।
आजकल जहां सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ज्यादा जागरूक होने पर इतना जोर है, ये विचार बिल्कुल विपरीत दिशा दिखाता है।
सही कहा।
तीसरा,
गैर अस्तित्व के प्रति एक अजीब सा खिंचाव या चाहत, इतना नहीं थी।
हाँ, आज की भागम भाग वाली जिंदगी में शायद ये सुकून की तलाश जैसा लगता है, पर स्योरान का इशारा ज्यादा गहरा है।
चौथा,
आत्महत्या का विचार एक मुक्ति देने वाला औजार हो सकता है।
ये बात सुनने में भली अटपटी लगे और इसे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है।
बिल्कुल, सावधानी से।
लेकिन ये ख्याल कि हमारे पास एक स्विच ऑफ बटन है, वो जिंदगी के भारीपन को कुछ हल्का कर सकता है, ये जीने के दबाव को कम कर सकता है।
पांचवा, प्रगति और इतिहास पर गहरा शक।
हाँ, ये सोचना कि इंसान की सारी कोशिशें अक्सर बेकार और दोहराव भरी होती हैं।
और जिसे हम तरक्की कहते हैं, वो शायद बस एक वहम है।
बिल्कुल, जब हम लगातार विकास, ग्रोथ और बेहतर भविष्य की बातें सुनते हैं, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई कहीं जा रहे हैं।
सही बात। और छठा,
भाषा की सीमाएं और मौन का महत्व, जो सबसे गहरा है, जो सबसे असली है, वो शायद कहा ही नहीं जा सकता। आज के कम्युनिकेशन के जमाने में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, खामोशी की कीमत याद दिलाना भी एक जरूरी संदेश है।
हाँ।
सियोरान के लिखने की खासियत उनके वो छोटे तीखे यादगार वाक्य हैं, उनके एफोरिज्म्स।
हाँ, बहुत है।
कुछ उदाहरण देखते हैं जो उनके विचारों की धार दिखाते हैं।
हाँ, जैसे ये वाला, आत्महत्या करने का कष्ट उठाने लायक नहीं है क्योंकि आप हमेशा बहुत देर से आत्महत्या करते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या करें या ना करें, ये एक तरह का स्याम मजाक है।
अच्छा।
कि जब तक हम जिंदगी की व्यर्थता के नतीजे पर पहुंचते हैं, तब तक तो हम इसका ज्यादातर दुख झेल ही चुके होते हैं। अकल अक्सर ठोकर खाने के बाद आती है ना, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
या फिर ये तथ्य कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीने का एक कारण है, बल्कि एकमात्र कारण।
ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना।
हाँ।
लेकिन शायद इसका मतलब है कि जब हम जिंदगी में कोई बड़ा बाहरी अर्थ खोजने के बोझ से आजाद हो जाते हैं, तो हम शायद ज्यादा हल्केपन से, बिना किसी दबाव के जी सकते हैं। अर्थ की तलाश खुद एक बोझ बन जाती है।
ये दिलचस्प है।
और ये वाला तो उनके जन्म विरोधी विचार, जिसे एंटी नेटलिज्म कहते हैं, उसका चरम है। पिता होने के अपराध को छोड़कर हर अपराध किया है। ये दिखाता है कि वो बच्चे पैदा करने को कितना गंभीर और नकारात्मक काम मानते थे। उनके लिए किसी को जिंदगी देना सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि आप उसे दुख के संसार में धकेल रहे हैं।
काफी एक्सट्रीम विचार रहे हैं।
है तो। और एक आखिरी, जो निराशावाद को भी एक नए ढंग से दिखाता है। केवल आशावादी ही आत्महत्या करते हैं, दूसरों के पास जीने का कोई कारण नहीं होता, तो उनके पास मरने का कोई कारण क्यों होगा?
कितना उलझा हुआ विचार है।
हाँ, मतलब ये कि आत्महत्या करने के लिए भी एक तरह की उम्मीद या विश्वास चाहिए, शायद ये उम्मीद कि मौत से छुटकारा मिलेगा।
या ये विश्वास कि जिंदगी को तो सार्थक होना चाहिए था, पर वो है नहीं।
बिल्कुल, जो पूरी तरह नाउम्मीद है, जिसने कोई उम्मीद पाली ही नहीं, वो जीने या मरने की भी जहमत क्यों उठाएगा? उसके लिए दोनों बराबर है।
कमाल है। तो अब वो सवाल जिस पर हम सब सोच रहे होंगे, इतने निराशावादी, इतने नकारात्मक दर्शन का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
क्या इससे कुछ अच्छा भी निकल सकता?
अजीब लगेगा, पर शायद हाँ। पहला तो ये कि आज की दुनिया में जहाँ हर वक्त कामयाब होने, कुछ बड़ा करने का दबाव रहता है,
बहुत ज्यादा दबाव है,
सियोरान के विचार इस दबाव से थोड़ी राहत दे सकते हैं। ये याद दिलाते हैं कि हमेशा सफल होना, हमेशा आगे बढ़ना ही सब कुछ नहीं है।
अपनी नाकामियों, अपनी कमियों को शायद हम थोड़ी कम गंभीरता से लेना सीख सकते हैं।
हाँ, ये आज की टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी जबरदस्ती की सकारात्मकता का एक तरह से तोड़ है। ये कहना कि ठीक है अगर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये भी ठीक है।
दूसरा,
सोचते हैं या जिन्हें कभी कभी सब बेकार लगता है,
हाँ,
उनके लिए ये जानना शायद सुकून दे कि वो अकेले नहीं है। उनकी भावनाएं सिर्फ उनकी दिमागी कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की सच्चाई का एक हिस्सा हो सकती हैं।
इससे खुद को कोसना कम हो सकता है।
बिल्कुल। तीसरा, ये हमें बौद्धिक विनम्रता और संदेहवाद सिखाता है।
कैसे?
सियोरान हमें बड़े बड़े दावों, विचारधाराओं और हर मर्ज की एक दवा जैसे आसान समाधानों पर सवाल उठाना सिखाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या आजकल की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री।
ये हमें कट्टर बनने से बचा सकता है।
हाँ, और चीजों को ज्यादा गहराई से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है।
चौथा,
सबसे बुरे को स्वीकार करने में एक अजीब सी आजादी मिल सकती है।
वो कैसे?
जब हम सबसे खराब संभावना का सामना करने की हिम्मत कर लेते हैं, जैसे कि हाँ शायद जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंताएं अपना असर खोने लगती हैं।
उम्मीद छोड़ देने में एक अजीब सी शांति मिल सकती है।
हाँ, क्योंकि फिर नाउम्मीद होने का डर नहीं रहता।
अच्छा, और पांचवा?
पांचवा, ये रिश्तों में ज्यादा यथार्थवाद ला सकता है।
मतलब?
ये समझना कि कोई दूसरा इंसान हमारी जिंदगी की सारी उलझनें नहीं सुलझा सकता, नहीं हम किसी और की।
इससे हम रिश्तों पर जरूरत से ज्यादा उम्मीदों का बोझ नहीं डालते।
सही कहा। और शायद रिश्ते ज्यादा सच्चे और गहरे बन सकते हैं।
तो कुल मिलाकर सियोरान की जन्म का संकट से सबसे बड़ा सबक शायद बौद्धिक ईमानदारी का है।
हाँ, मुझे भी यही लगता है।
ये हमें मजबूर करती है कि हम जिंदगी की मुश्किलों, उसकी बेतुकी बातों का सामना करें, उनसे नजरें न चुराएं, चाहे ये कितना भी असहज क्यों ना हो।
हाँ, सियोरान दिखाते हैं कि शायद झूठे वहमों और दिलासों के सहारे जीने की कोशिश में ज्यादा दुख है बजाय कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के।
उनका निराशावाद शायद हमें नाउम्मीद करने के लिए नहीं,
एक तरह का यथार्थवाद लाने के लिए है। शायद झूठी उम्मीदों से आजाद होकर ही एक अलग, ज्यादा गहरी किस्म की शांति मिलती है।
ये किताब हमें चेतना के उन विरोधाभासों के साथ जीना सिखा सकती हैं जिनका शायद कोई हल है ही नहीं,
और शायद हल ढूंढने की कोशिश करना ही बेकार है।
ये अस्तित्व पर एक गहरा, परेशान करने वाला, लेकिन आखिर में शायद रोशनी दिखाने वाला ध्यान है।
बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी समझ आरामदेह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कीमती होती है।
ये हमें उन सवालों से जूझने का हौसला देती हैं जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं।
सचमुच एक अनोखी और यादगार किताब।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।